ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम ये श्लोक ले रहे हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से, जिसमें वाल्मीकि मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान बहुत ही संक्षिप्त तरीके से कर रहे हैं। तो कृपया मेरे पीछे बोलिए, श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम्, रामाय कार्यं नमः, रामात्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रय। श्री मैं उन श्री रामचंद्र जी को नमन करता हूं जो कि समस्त जगत के शरण हैं। वो श्री रामचंद्र जी जिनके बिना कोई गति नहीं इस कलयुग में, वो श्री राम जो इस कलयुग के कल्मश का हनन करने वाले हैं, वो श्री राम जो कि काल सर्प को त्रस्त करते हैं, वो श्री राम जिनके वश में ये पूरा संसार है, वो श्री राम जो सबके आश्रय हैं, वही श्री राम के प्रति मेरी भक्ति अखंडित स्वरूप में रहे। यहां पर वाल्मीकि मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी का इस सुंदर श्लोक में गुणगान करते हुए बता रहे हैं कि आज के इस रामनवमी दिवस पर हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त किस प्रकार से अपने आप को प्रकट करना चाहिए। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम वो ये पूरे संसार, पूरे समस्त संसार के वो शरण हैं और उनके बिना इस संसार की कोई गति नहीं। और ये हम ये समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति श्री रामचंद्र जी की शरण ग्रहण नहीं करता तो सदगति तो दूर की बात है, वो व्यक्ति दुर्गति के पथ पर रहता है। और यदि हमें इस कलयुग में सारे कलमशों से दूर होना है तो केवल प्रभु राम ही हैं और उनका नाम ही है एकमात्र जो हमें समस्त कलमशों से दूर करेगा। और यहां पर वो कहते हैं कि मेरी जो भक्ति है वो आपके चरणों में अखंडित स्वरूप से रहे, क्योंकि आप ही एकमात्र आश्रय हो। रामायण में ये कथा आती है कि जब प्रभु रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया था, उसके पश्चात जब वो अयोध्या में, अब अयोध्या नरेश के रूप में विराजने वाले थे, उनका राज्याभिषेक का दिन निर्धारित हुआ और लंका से विभीषण और विभीषण के कुछ पार्षद, राक्षसी पार्षद, वो भी अयोध्या पहुंचे। तो जब वो अयोध्या पहुंचे तो उस समय तक जो सेतु बांधा था प्रभु रामचंद्र जी ने, वो सेतु तब तक था। तो सेतु की सहायता से उन्होंने उस समुद्र को पार किया और वो अयोध्या पहुंचे और वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। उस समारोह में भाग लिया और कुछ समय रहने के पश्चात फिर जब समय आया फिर से लंका जाने का, तो जब वो पहुंचे समुद्र के तट पर तो वहां पर कोई सेतु नहीं था। अब वो सेतु अब समुद्र के सतह तक चला गया था नीचे। तब कैसे इस समुद्र को पार करें? और उनके पास कोई नाव भी नहीं थी। तो सभी राक्षस गण थोड़ा चिंतित हुए, सोच रहे थे कि हमने कुछ गलती की यहां पर इस राज्याभिषेक में आकर, कि अभी फिर से जाना नहीं होगा यहां से। तो विभीषण, उन्होंने क्या किया, वो थोड़ा चलकर एक अश्वत्थ वृक्ष के एक टहनी से एक अश्वत्थ का पत्ता लिया उस वृक्ष का, और उस पत्ते को एक कपड़े की पोटली में बांधकर इन राक्षसों के हाथ में दिया, ये कहते हुए कि बस इसे अपने हाथ में पकड़कर रखो और समुद्र में प्रवेश करो। और केवल एक ही नियम है कि इसे खोलना नहीं, और जब तक खोलोगे नहीं तब तक इसकी सहायता से, इसकी शक्ति से इस पूरे समुद्र को चलकर पार कर जाओगे। तो पहले तो थोड़ा संशय हुआ उन्हें कि केवल एक पोटली हाथ में है और उसकी शक्ति से पूरे समुद्र को चलकर पार कर जाएंगे, परंतु विभीषण के ऊपर विश्वास था इनका, तो इन्होंने उसका पालन किया। और जब शुरू किया उन्होंने समुद्र में प्रवेश करना, तो सबसे पहले तो आसान होता है समुद्र में प्रवेश करना, तो धीरे धीरे जब चल रहे थे तो घुटनों तक पानी आया, परंतु विभीषण ने कहा था कि हाथ में इस पोटली को पकड़े रखना, तो पकड़े रखे थे, चल रहे थे तो जितना वो चलते केवल पानी घुटनों तक ही रहता। अब समुद्र के मध्य तक पहुंच गए वो, परंतु वहां पर भी उन्होंने क्या देखा कि पानी घुटने तक ही था, कि जैसे कोई साधारण सी नदी कोई पार कर जाए चलकर, उस प्रकार से ये पार कर रहे थे। तो सभी राक्षस एक आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि ये क्या आश्चर्य देख रहे हैं कि समुद्र का पानी केवल घुटनों तक, और बस कुछ ही अब अंतरा रह गया था उस समुद्र को पार करने में। तो एक राक्षस ने सोचा कि देखते हैं पोटली के अंदर क्या है, क्या है इसके अंदर जिसके वजह से इतनी शक्ति हुई है कि ये समुद्र का जो जल है केवल घुटनों तक ही रहा है। तो दूसरे राक्षसों ने कहा नहीं, परंतु विभीषण ने नियम रखा था कि इसे खोलना मत। तो फिर भी एक राक्षस ने उस नियम का उल्लंघन किया और उस पोटली को खोला। तो जैसे उस पोटली को खोलता है वो राक्षस, तो अंदर एक अश्वत्थ का पत्ता, और उस अश्वत्थ के पत्ते के ऊपर केवल दो अक्षर लिखे हुए थे, और वो थे राम। तो इस राक्षस को लगा कि अरे ये केवल दो अक्षर, और अंदर पोटली में उसे लगा था कि कोई कोई जादुई चीज होगी जिसके वजह से समुद्र का जल केवल घुटनों तक है, तो वो संशय करने लगा कि क्या केवल ये अश्वत्थ का पत्ता जिसके ऊपर ये दो अक्षर लिखे हुए हैं हमें बचा रहा है। तो जैसे ही उसने संशय किया, तुरंत सामने से समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर, जैसे कोई सुनामी हो, इतनी बड़ी लहर उत्पन्न हुई समुद्र से, और वो सारे राक्षसों को डुबा दिया। वही समुद्र जो अब घुटने तक था उसका पानी, इतनी बड़ी लहर आई और वो सारे राक्षस वहां पर डूबकर मर गए। और फिर समुद्र के जल के ऊपर क्या तैरता हुआ पाया गया? वो अश्वत्थ का पत्ता जिसके ऊपर राम का नाम लिखा था। तो आचार्य बताते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, परंतु उनका नाम उनसे अधिक शक्तिशाली है, और वो नाम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब विभीषण जैसे भक्त देते हैं हमें, तो उसमें विशेष शक्ति भगवान की पाई जाती है। परंतु जब कोई व्यक्ति उसमें संशय करता है, तो संशय करने से पहले वो जो समुद्र पार कर रहे थे राक्षस, उसकी तुलना की गई है कि हम इस भव सागर को उसी प्रकार से पार कर सकेंगे जैसे वो राक्षस पार कर रहे थे उस समुद्र को, जिसका पानी केवल घुटनों तक ही था। परंतु जब संशय किया भगवान के नाम के ऊपर, तो वही पानी घुटनों तक का वो एक इतनी बड़ी लहर में परिवर्तित हो गया और उन सभी राक्षसों को डुबा दिया। तो इसलिए यहां पर इस सुंदर श्लोक में वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं कि आप ही एकमात्र आश्रय हैं, ये जो भव सागर है, ये जो कली रूपी सागर है और जो काल रूपी सर्प है, अलग अलग विश्लेषण वो दे रहे हैं। भुजंग, काल को भुजंग कहा गया है यहां पर। ये सबसे यदि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, तो एकमात्र उपाय है प्रभु श्री रामचंद्र जी का आश्रय ग्रहण करना, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का आश्रय रामनवमी के इस दिवस पर सबसे अधिक मात्रा में हमें करना चाहिए, और प्रभु श्री रामचंद्र जी को कृपा है वो सबसे अधिक मात्रा में हमें उनके आविर्भाव दिवस में मिल सकती है। तो कल जैसे हमने चर्चा की कि दशरथ महाराज, जो कि बहुत व्याकुल थे, जो कि बहुत त्रस्त थे और इतने दुखी थे कि अयोध्या नगरी, जो कि सर्वगुण संपन्न, परंतु उस अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ केवल एक व्यक्ति थे जो दुखी थे, और वो दुखी इसलिए थे क्योंकि सब कुछ था अयोध्या नगरी में, परंतु प्रभु श्री राम नहीं थे। अभी तक प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार नहीं हुआ था वहां। तो दशरथ महाराज वो अपने मंत्री सुमंत्रा को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाकर हमारे राज्य के जितने भी वरिष्ठ ऋषिगण हैं, मुनि हैं, उनको बुलाओ और मुझे उनसे कुछ सलाह लेनी है, कुछ चर्चा करनी है। तो वशिष्ठ मुनि जो प्रमुख हैं, कुल पुरोहित थे वो, और उनकी अध्यक्षता में बाकी सारे जो ऋषिगण, जबाली ऋषि, काश्यप ऋषि, सुयज्ञ और वामदेव, ये सभी वहां पर उपस्थित हुए महाराज दशरथ के दरबार में। और महाराज दशरथ वहां पर इन सब के समक्ष वो अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है। और हालांकि सभी जानते हैं कि महाराज दशरथ वो कोई साधारण पिता नहीं है, कि कोई साधारण पिता जब पुत्र की कामना करता है, जैसे हमने कल उदाहरण लिया महाराज चित्रकेतु का, कि महाराज चित्रकेतु और महाराज दशरथ में यही अंतर था कि महाराज चित्रकेतु एक साधारण सा कोई पुत्र चाहते थे केवल अपने वंश को बढ़ाने के लिए, परंतु महाराज दशरथ वो स्वयं भगवान को अपने पुत्र रूप में चाहते थे। किस लिए? केवल वंश को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान की सेवा वात्सल्य रूप में करने के लिए। तो जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के विषय में यह प्रस्ताव रखा तो सभी ऋषिगण इतने प्रसन्न हुए, और विशेष रूप से महाराज वशिष्ठ, और उन्होंने दशरथ महाराज को कहा कि बहुत समय पहले सनत कुमार मेरे पास आए थे मेरे आश्रम में, और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कुछ ही समय पश्चात महाराज दशरथ उनको चार पुत्र होंगे और वो सर्वगुण संपन्न होंगे, और वो न केवल इस पृथ्वी का भार कम करेंगे बल्कि वो धर्म की स्थापना करेंगे, और उनके प्रमुख होंगे, ज्येष्ठ होंगे श्री रामचंद्र जी जो विष्णु के अवतार हैं। तो जैसे ही वशिष्ठ मुनि अब महाराज दशरथ को इस भविष्यवाणी के विषय में कहते हैं तो महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि मैं जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला हूं उसका निष्कर्ष होगा कि भगवान स्वयं प्रकट होने वाले हैं। तो तुरंत वो आदेश देते हैं कि अश्वमेध यज्ञ के लिए जो कुछ सामग्री है, व्यवस्था है, उसे तुरंत प्रारंभ की जाए। और उस समय सुमंथरा वो महाराज दशरथ को एकांत में ले जाकर कहते हैं कि मेरा एक सुझाव है कि आप ये जो अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं इसके लिए यदि आप एक बहुत ही विशेष व्यक्ति को आमंत्रित करें इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए तो अवश्य ही ये जो यज्ञ आपका होगा वो सफल रहेगा। तो महाराज दशरथ पूछते हैं कि वशिष्ठ मुनि हैं यहां पर, वही से सफल बनाएंगे। तो सुमंत्रा कहते हैं कि हां, वशिष्ठ मुनि तो सक्षम है ही, परंतु भविष्यवाणी के अनुसार एक और महानुभाव हैं जिन्हें इस यज्ञ में होना चाहिए पुरोहित के रूप में, और वो हैं ऋषि श्रृंग ऋषि। तो महाराज दशरथ इनके विषय में पूछते हैं कि कुछ बताओ इनके विषय में। तो सुमंत्रा इनकी कथा बताते हैं महाराज दशरथ को कि अंग देश के राजा हुए महाराज रोमपाद, और एक प्राचीन कथा है कि महाराज रोमपाद, उनके अंग देश में अकाल पड़ा एक दिन, अनावृष्टि हुई एक समय, और क्योंकि अनावृष्टि और अकाल के कारण पूरा राज्य, सारी प्रजा त्रस्त थी, तो महाराज रोमपाद वो इतने दुखी थे कि वो सोच रहे थे कि मैं राजा हूं और पता नहीं मैंने कौन सा अपराध, कौन सा पाप किया है जिसके वजह से पूरे राज्य में, अंग देश में अकाल पड़ा हुआ है। तो त्रस्त थे पूरे। और उस समय महाराज रोमपाद को यह सुझाव दिया गया कि यहां बगल के ही वन में एक ऋषि रहते हैं, ऋषि श्रृंग, जो कि विभांडक नामक ऋषि के पुत्र हैं। और ये ऋषि श्रृंग यदि आपके राज्य में अपना पैर भी रख दें, कुछ करना दूर, केवल अपना अपने चरण वो रख दें आपके राज्य में, तो तुरंत इंद्र जो है वो वर्षा बरसाएंगे। परंतु समस्या यह थी कि ये जो ऋषि श्रृंग थे, ये कभी अपने कुटीर से या उस वन से कभी वो बाहर नहीं निकले थे। वो पैदा हुए थे उसी जंगल में, अपने पिता के कुटिया में, और वहां पर भी वो अपनी सारा साधना तपस्या इत्यादि किया करते थे। और ये ऋषि श्रृंग ये ऐसे थे, इतने शुद्ध थे ये, कि इन्होंने ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, एक विरक्त के समान वो जी रहे थे अपना जीवन, कि इन्होंने अपने पिता को छोड़कर अपने जीवन में और किसी मनुष्य को देखा नहीं था। केवल जो जंगल के पशु पक्षी, पेड़ और उनके पिता, केवल इन्हीं जीवात्माओं को देखा था महाराज ऋषि श्रृंग ने। और क्योंकि वो इतने बड़े विरक्त थे, तो इन्हें बताया गया कि इतने बड़े विरक्त तो बहुत कठिन होगा इन्हें वहां से अंग देश में लाना। तो फिर महाराज रोमपाद सोचने लगे कि फिर क्या उपाय है, इन्हें कैसे बाहर लाया जाए। तो कुछ मंत्रियों ने सुझाव दिया कि क्योंकि ऋषि श्रृंग ने अभी तक जो काम वासना है उसका भोग अभी तक कभी किया नहीं, तो हो सकता है हम उसके द्वारा इन्हें प्रलोभित कर दें। तो फिर कुछ युवतियों को नियुक्त किया गया उनके राज्य के, और उन्हें उस जंगल में भेजा गया। पूर्ण प्रकार से वो सुसज्जित युवतियां उस जंगल में जाती हैं, और वहां पर ऋषि श्रृंग के सामने वो नृत्य और गीत गाना प्रारंभ करती हैं। तो यहां पर देखिए, महाराज ऋषि श्रृंग जिसने अपने पिता को छोड़कर और किसी मनुष्य को देखा नहीं था, तो ऋषि श्रृंग वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पता भी नहीं था कि पुरुष कौन होता है और स्त्री कौन होती है, उसका भी अंतर नहीं पता था ऋषि श्रृंग को। तो महाराज ऋषि श्रृंग इन युवतियों को देखते हैं, और युवतियों को देखकर बड़ा उन्हें अचरज लगता है कि ये सबसे पहले मैं आज कौन देख रहा हूं, किस व्यक्तियों को देख रहा हूं। तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये कौन सी योनि के हैं, दिखने में तो थोड़े मेरे पिता जैसे ही दिखते हैं। महाराज ऋषि सिंह ने अपने आप को भी नहीं देखा था, केवल एक ही मनुष्य वो है उनके पिता। तो वो अब तुलना कर रहे थे कि ये कुछ मेरे पिता जैसे दिखते हैं परंतु थोड़ा अलग है, मेरे पिता से थोड़ा अलग है, क्योंकि मैंने इतने मेरे पिता को देखा है रोज, कभी मेरे अंदर इतनी आसक्ति जागृत नहीं हुई मेरे पिता के प्रति जितनी आज मेरे अंदर जागृत हो रही है इन युवतियों को देखते हुए। हालांकि वो ये नहीं कह रहे थे कि युवतियां हैं, जो भी हैं ये। तो जाकर उनसे पूछते हैं कि आप कौन से प्रकार के ऋषि मुनि हैं और कौन से आश्रम से हैं और ये कौन सी साधना आप कर रहे हैं। और वो कौन सी साधना कर रही थी, वो नृत्य कर रही थी, गीत गा रही थी तो धीरे धीरे ये सारी युवतियों ने महाराज ऋषि श्रृंग को उस आश्रम से बाहर निकाला। और वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि यदि इनके पिता ने उनको देख लिया तो श्राप दे देंगे, और हो सकता है कि ऋषि श्रृंग भी श्राप दे देंगे। तो पहले से ही अकाल पड़ा हुआ है, अनावृष्टि है, उसके ऊपर इनका श्राप, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। परंतु इनका प्रयोजन क्या था, इन्हें बताया गया था कि किसी न किसी तरीके से ये महाराज ऋषय श्रृंग को इनके चरण लगने चाहिए अंग देश में, बस। तो किसी प्रकार से प्रलोभित करते 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 ऋषय श्रृंग को अंग देश में लाना है, और केवल वो टच कर चले जाए बस हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, वर्षा होगी। परंतु ये थोड़ा कठिन था ये कर पाना। तो वो प्रलोभित कर रहे थे ऋषय श्रृंग को कुटिया से बाहर आने के लिए, और ऋषय श्रृंग उन्हें कुटिया में ले जा रहे थे, आओ थोड़ा हम कुटिया दिखाते हैं, हमारी छोटा सा हमारा ये आश्रम है। तो ये सारी युवतियों को महाराज ऋषय श्रृंग अंदर ले जा रहे हैं, ये सब डरी हुई है अब कि विभांडक इनके पिता यदि हमें देख लेंगे। तो ऋषय श्रृंग, अब उन्होंने सोचा कि ये लोग आए हैं तो इन्हें कुछ देना चाहिए, कुछ इनकी इनका आवभगत होना चाहिए। तो जो कुछ कंद मूल फल था वो सब कुछ लाकर इन युवतियों को दिया, और इन युवतियों ने क्या दिया ऋषय श्रृंग महाराज को, सोचा कि वो सब लाए थे मिठाई और बड़े बड़े राजकीय खाद्य और ये सारे पदार्थ लाए थे, तो सारी मिठाइयां और ये बहुत ही उत्कृष्ट खाद्य पदार्थ ये महाराज ऋषय श्रृंग को दिया। तो महाराज ऋषय श्रृंग ने जब ये मिठाइयों को देखा, पहली बार मिठाइयां देख रहे हैं अपने जीवन में, तो इन मिठाइयों को देखते हुए पूछते हैं कि ये सुगंध इतनी अच्छी आ रही थी, तो पूछते हैं ये खाने के लिए है। तो युवतियों ने खिलाया वो सारी मिठाइयां, और खिलाने के पश्चात वो युवतियां वहां से निकल गई, क्योंकि अब समझ गए कि ये जो अभी खा लिया है ऋषय श्रृंग ने, इसे ढूंढते हुए ये ऋषय श्रृंग बाहर आएगा अपनी कुटिया से। तो ऋषय श्रृंग ने जब उसे खाया तो कभी इतना सुंदर और इतना स्वादिष्ट कोई भोजन खाद्य पदार्थ नहीं खाया था ऋषय श्रृंग ने। तो दूसरे दिन ढूंढते हुए, अब पूरे वन में जंगल में ढूंढते हुए कि वो युवतियां कहां गई जो मुझे वो सब खिलाकर, तो दूसरे दिन वहां के उस जंगल की सीमा पर वो युवतियां खड़ी रही, और ढूंढते ढूंढते ऋषय श्रृंग वहां पर पहुंचे, और उन युवतियों ने ऋषय श्रृंग को महाराज रोमपाद के महल में ले आए। और जैसे ही महाराज ऋषय श्रृंग ने अपने चरण रखे अंग देश में, तुरंत तुरंत वहां पर घने बादल छा गए और वर्षा प्रारंभ हुई। और वहां पर जाने के बाद जब इतने मनुष्यों को देखा और ऐसे ऋषि मुनियों को देखा जो उनके पिता के समान दिखते थे अब इन युवतियों के अलावा, तब फिर उन्हें समझ में आया कि इस जंगल के बाहर भी मनुष्य समाज है, इतने वो शुद्ध थे महाराज ऋषय श्रृंग। तो महाराज रोमपाद की पुत्री थी जिनका नाम था शांता, और ये वास्तविक रूप में महाराज दशरथ की पुत्री थी जिन्हें गोद लिया था महाराज रोमपाद ने। तो महाराज दशरथ ने अपनी पुत्री दे दी थी महाराज रोमपाद को। तो फिर अब देखा कि ऋषय श्रृंग यहां पर आए हैं और इनके पिता पीछे पीछे ढूंढते हुए आएंगे, और यदि दोनों ये जान लिए कि मैं अपनी पुत्री देना चाहता हूं ऋषय श्रृंग महाराज को, उनकी पुत्री शांता, तो हो सकता है कि शांता देने से सब शांत हो जाएंगे ऋषय श्रृंग और उनके पिताजी। और वो हुआ भी, क्योंकि ये लिखा हुआ था कि ऋषय श्रृंग अंग देश में आएंगे जब अनावृष्टि होगी, और इनके चरण लगने से यहां पर वृष्टि होगी, और फिर उनका विवाह होगा शांता से। तो इस प्रकार से उनका विवाह हुआ संपन्न शांता से, और ऋषय श्रृंग वहां पर रहने लगे अंग देश में। तो सुमंथरा इन ऋषय श्रृंग के विषय में कहते हैं महाराज दशरथ को कि आप जो अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, तो इन ऋषि श्रृंग महाराज को आप बुलाइए और ये रहेंगे तो आपका अश्वमेध यज्ञ जो है वो सफल रहेगा। तो तुरंत फिर सारी व्यवस्था की गई और अश्वमेध यज्ञ वो ऐसा होता है जिसमें एक अश्व, बहुत ही सुंदर अश्व जिसमें कोई खोट न हो, ऐसे अश्व को, घोड़े को लाया जाता है और एक साल तक इस घोड़े को पूरी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो अलग अलग राष्ट्र में, प्रांतों में यह घोड़ा गुजरता हुआ जाता है और यदि किसी देश के राजा ने इस घोड़े को ललकारा तो घोड़े को ललकारने का अर्थ है जिसने वो घोड़ा भेजा है, महाराज दशरथ जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वो राजा महाराज दशरथ को ललकार रहा है, तो फिर युद्ध होगा और यदि महाराज दशरथ हारते हैं तो अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता। परंतु यदि महाराज दशरथ उस व्यक्ति से जीत जाते हैं युद्ध में तो फिर अश्वमेध यज्ञ आगे बढ़ता है। परंतु महाराज दशरथ वो इतने शक्तिशाली राजा थे अपने समय के कि जब ये अश्व जा रहा था, हर एक देश से गुजर रहा था, तो सारे जो राजा वो सब घुटना टेक कर दंडवत कर रहे थे महाराज दशरथ के इस अश्व को, और वो शरणागत हो रहे थे, अपना पूरा देश राज्य सब कुछ वो शरणागत कर रहे थे महाराज दशरथ के समक्ष। और इस प्रकार से एक पूरा वर्ष ये अश्व घूमते फिर से पहुंचा और अब व्यवस्था शुरू हुई अश्वमेध यज्ञ की। और वशिष्ठ मुनि ने आदेश दिया कि सरयू के पूर्वी तट पर एक बड़ी यज्ञशाला बनाई जाए और बड़े बड़े सारे राज्यों को और उनके राजाओं को बुलाया जाए। और वशिष्ठ मुनि ने सुमंत्रा से कहा कि विशेष रूप से महाराज जनक को बुलाओ, मिथिला नरेश, क्योंकि महाराज जनक इनका रिश्ता स्थापित होने वाला है महाराज दशरथ से। केवल इतना ही वशिष्ठ मुनि ने सुमंत्रा से कहा कि इनका रिश्ता स्थापित होने वाला है महाराज दशरथ से, तो इन्हें विशेष रूप से बुलाना और विशेष इनका अतिथि सत्कार करना। और कैकेयी के जो नरेश हैं उन्हें बुलाया जाए। और इस प्रकार से बड़े बड़े राजा वहां पर आए अश्वमेध यज्ञ में और महाराज ऋषिशृंग और वशिष्ठ मुनि उन्होंने ये अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। अब देखिए उस समय त्रेता युग, जो कि उस समय युग धर्म था यज्ञ, जैसे कि सतयुग में हम कहते हैं युग धर्म था तपस्या आदि, त्रेता में यज्ञ आदि, द्वापर में मूर्ति पूजा अर्च विग्रह की आराधना और इस कलयुग में श्री हरि नाम संकीर्तन। तो बहुत ही, क्योंकि युग धर्म था ये इस प्रकार के यज्ञ को संपन्न करना, तो बहुत ही विशाल तरीके से इस यज्ञ को संपन्न किया गया। और रामायण में इसका वर्णन है कि जब वो समय आया कि अब इस अश्व को उस यज्ञ में अर्पित किया जाएगा, तो वशिष्ठ मुनि देखिए इतने शुद्ध थे और ऋषिशृंग महाराज, कि जब उस अश्व को अर्पित किया गया अग्नि में, यज्ञ में, तो वो अश्व तुरंत उस स्वर्गलोक की प्राप्ति उसे हुई और वो सिद्ध हुआ कि अश्वमेध यज्ञ अब सफल रहा है। और वशिष्ठ मुनि और ऋषिशृंग महाराज वो शुद्ध ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, जो इसे संपन्न किए हैं। परंतु महाराज दशरथ अब भी व्याकुल थे क्योंकि उसके साथ साथ उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी किया था और उनका विशेष प्रयोजन अश्वमेध यज्ञ करने का यही था कि उस यज्ञ से उनकी जो तीन रानियां हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। तो वो थोड़े व्याकुल थे परंतु उसके साथ साथ उन्हें इतनी प्रसन्नता थी कि अश्वमेध यज्ञ सफल रहा है, तो उन्होंने पूरे अयोध्या में जितने भी ब्राह्मण थे उनको बुलाया और देखिए महाराज दशरथ वो किस प्रकार के राजा थे, उस समय के क्षत्रिय देखिए। तो महाराज दशरथ ने ये सारे ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि पूरी पृथ्वी में आपको दान देना चाहता हूं, पूरी पृथ्वी। तो सारे ब्राह्मण जो हैं, ऐसा नहीं कि जैसे क्षत्रिय थे इतने दानवीर, उतने ही विरक्त ब्राह्मण भी थे उस समय के। और आजकल तो पूरा उल्टा है दोनों में, न तो कोई क्षत्रिय है और यदि कोई मिला भी तो कोई उनमें दान के इस प्रकार के गुण नहीं है, किसकी रक्षा करेंगे। जो रक्षक हैं वही भक्षक बने हुए हैं आजकल तो नेतागण। और जो तथाकथित ब्राह्मण हैं, विरक्ति ये क्या शब्द है ये कोई ब्राह्मण को पता भी नहीं है आजकल। तो जब महाराज दशरथ ने इन ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि मैं पूरी पृथ्वी दान में देना चाहता हूं, तो ये सारे ब्राह्मण कहते हैं कि हम क्या करेंगे पृथ्वी लेकर, हमें कुछ ये पृथ्वी नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप केवल आशीर्वाद दीजिए हमें कि हम हमारे ब्राह्मणत्व का धर्म ठीक से पालन करें। जैसे महाभारत में भी वर्णन है, जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने जा रहे थे तो उन्होंने अर्जुन को भेजा कि कुछ धन एकत्रित करो, राजसूय यज्ञ के लिए धन की आवश्यकता है। और धन उस समय क्या था, स्वर्ण सोना। तो अर्जुन जाते हैं, इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा कि उन्होंने धन अर्जित किया महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए। तो वो सारे यज्ञ स्थलियों पर गए अर्जुन, जहां जहां यज्ञ हुए थे वो सारे यज्ञ स्थलियों पर गए, क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या पाया कि जो भी यज्ञ हुए थे पहले के और ब्राह्मण वहां पर आए थे, तो ब्राह्मणों को सोने की थाली में भोजन परोसा गया था उन यज्ञों में, सोने की असली, क्या कहते हैं उसे, 24 कैरेट असली सोना। तो असली सोने की थाली में सभी ब्राह्मणों को भोजन या प्रसाद परोसा गया था। और ब्राह्मण इतने विरक्त थे कि प्रसाद पाने के बाद जैसे हम ये जो पत्तल फेंक देते हैं, वैसे उन्होंने वो सोने की थाली वहीं पर छोड़कर चले गए थे। तो ये ब्राह्मणों के छोड़े हुए सोने की थालियों को इकट्ठा किया अर्जुन ने, धनंजय ने, और उनसे धन एकत्रित कर कर वो राजसूय यज्ञ संपन्न किया महाराज युधिष्ठिर का। तो ये ऐसे ब्राह्मण हुए थे उस समय के, जैसे वाल्मीकि मुनि दशरथ महाराज की इस दानवीरता को बताते हुए उन्हें उल्लेख करते हैं रघुनंदन ये कहकर, क्योंकि एक राजा हुए रघु उनके वंश में, इसलिए महाराज दशरथ को रघुनंदन भी कहा जाता है। तो ये जो राजा थे इनके विषय में कथा रामायण में सुनाते हैं वाल्मीकि मुनि कि एक बार इन्होंने भी इसी प्रकार से विश्वजीत यज्ञ किया, और उस विश्वजीत यज्ञ में सभी ब्राह्मणों को इतना दान दिया इन्होंने कि ये स्वयं निर्धन हो गए, पूरा राज्य दान में दे दिया सभी ब्राह्मणों को। इतने सारे ब्राह्मण आए इस विश्वजीत यज्ञ में, तो जो कुछ राजकोष में था, जितना धन था, जितने स्वर्ण मुद्राएं थी, पूरा राज्य, एक एक राज्य का हर एक प्रॉपर्टी जो था, संपत्ति, सब कुछ दे दी गई इन ब्राह्मणों को। तो ये स्वयं अब केवल एक झोपड़ा बाकी रह गया इनके लिए, और केवल कुछ माटी के बर्तन थे इनके लिए बस केवल। तो एक ब्राह्मण अंत में आए और वो आकर महाराज रघु से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि आपने बहुत कुछ दान दिया है, तो मुझे भी आवश्यकता है, और कितने धन राशि की आवश्यकता थी उन्हें? उन्होंने कहा मुझे चाहिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। जब यहां पर सब कुछ खत्म हो गया है और स्वयं ये महाराज रघु एक झोपड़ा में आ गए हैं, तो यहां पर आकर ये ब्राह्मण ये पूछता है कि मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, कुछ बकाया रह गया है मेरे गुरु का तो उसे भरना है। तब और कोई व्यक्ति होता तो अरे भाई देखा नहीं इतना दान पहले ही मैंने कर दिया है, अभी मांगने आए वो भी 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। परंतु महाराज रघु ने कहा कि नहीं आप रुकिए, मैं इसकी व्यवस्था करता हूं। तो ये ब्राह्मण ने देखा कि क्या व्यवस्था ये करेंगे, स्वयं झोपड़ा में है, कुछ मिट्टी के बर्तन मटके यहां पर पड़े हुए हैं और जिनके अंदर भी केवल पानी है और कुछ नहीं है। तो ये ब्राह्मण, इसने सोचा कि शायद यहां पर कुछ नहीं मिलने वाला, तो निकलते बाहर जा रहा था। तो महाराज रघु ने बिठाया कि मुझे एक दिन की अवधि दो और एक दिन में मैं पूर्ण प्रयास करूंगा ये पूरी धनराशि इकट्ठा करने की। और उस एक दिन में उन्होंने क्या किया, कुबेर जो कि पूरी देवताओं के कैशियर हैं, अकाउंटेंट हैं, तो कुबेर को याचना की और अपने कुबेर को याचना करते करते अपने पूरी सेना को कहा कि यदि कुबेर नहीं देते तो आक्रमण करना है उनके ऊपर, क्योंकि एक ब्राह्मण को मैं संतुष्ट नहीं कर पाया। तो सारी सेना को कह दिया कि तैयार रहना, यदि कुबेर ये पूरी धनराशि नहीं देते तो आक्रमण कर फिर जबरदस्ती लेना होगा कुबेर से। परंतु कुबेर जानते थे कि महाराज रघु कितने महान क्षत्रिय हैं, राजा हैं, तो अपने से ही कुबेर ने आकाश से ये स्वर्ण मुद्राएं गिरने लगी, जैसे वर्षा गिरती है, वर्षा के बूंद जैसे गिरते हैं वैसे आकाश से ये स्वर्ण मुद्राएं गिरने लगी। और इतनी स्वर्ण मुद्राएं गिर गई कि पूरा राज्य फिर से भर गया धनराशि से, 14 करोड़ से कई गुना ज्यादा करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं वहां पर आ गई। और ये सारी स्वर्ण मुद्राएं 14 करोड़ से इतनी ज्यादा थी ये स्वर्ण मुद्राएं, ये सारी स्वर्ण मुद्राएं ले जाकर उन ब्राह्मण को दिया। परंतु उन ब्राह्मण ने क्या कहा, देखिए दोनों के गुण यहां पर बताए गए हैं कि ऐसा नहीं कि महाराज रघु ने गिन कर केवल 14 करोड़ निकाले, बाकी अभी अपने लिए रख लेते हैं। उन्होंने जितना कुछ आकाश से गिरा था वो सब कुछ ले गए इस ब्राह्मण को देने के लिए। और ये ब्राह्मण ऐसा नहीं कि भाई अभी 14 करोड़ से ज्यादा मिला है तो उसको किधर बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं या किसी स्कीम में लगा देते हैं, उसको उसका इंटरेस्ट लेते रहेंगे पूरे जिंदगी भर। उन्होंने भी केवल जितना उन्हें देना था अपने गुरु को, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं केवल उतनी ही निकाली और केवल उतने ही स्वर्ण मुद्राएं ली। तो महाराज रघु ने कहा कि नहीं भाई ये आपके लिए है पूरा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो केवल 14 करोड़ मांगे थे मैंने। तो यहां पर अब देखिए दोनों में वाद विवाद क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं लूंगा और ये कह रहे हैं कि नहीं आपको लेना होगा। ऐसा भी समय था एक कि इसके ऊपर ये लोग झगड़ा कर रहे थे कि ये जो बचे हुए स्वर्ण मुद्राएं हैं ये कौन लेगा। तो महाराज रघु वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने कुबेर को कहा देने के लिए और जो कुछ कुबेर ने दिया है वो आपको मुझे देना है दान में। और वो कहते कि नहीं, जो मैंने मांगा था वही मैं लूंगा, उससे अधिक नहीं, अत्याहार नहीं। तो यहां पर फिर कुबेर आते हैं और वो जो बाकी धनराशि बच जाती है उसे ले जाते हैं। तो इस कथा को सुनाते हुए वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि महाराज दशरथ वो इस वंश में थे जिस वंश में महाराज रघु जैसे राजा हुए। तो महाराज दशरथ ने भी सारे ब्राह्मणों को बुलाया और अश्वमेध यज्ञ जब संपन्न हुआ सफलतापूर्वक तो कहा कि इस पूरी पृथ्वी, अयोध्या नगरी पूरी पृथ्वी आपको दान में देना चाहते हैं। परंतु ये ब्राह्मण ने कहे कि नहीं नहीं, हम तो केवल आपका आशीर्वाद चाहते हैं। और फिर जब वो इस प्रकार से व्याकुल थे कि जो वो चाहते थे वो अब तक पूरा नहीं हुआ है, तो उसी समय यज्ञशाला से उत्पन्न हुआ एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति जो कि आभूषणों से वनमालाओं से सुसज्जित था और उसके हाथ में वो पायसम का लोटा था जो कि वो महाराज दशरथ के लिए लाए थे उनकी रानियों को पिलाने के लिए जिनसे अब चार पुत्र उत्पन्न होंगे। तो वो लाकर महाराज दशरथ को वो देते हैं और महाराज दशरथ को बताते हैं कि किस प्रकार से उन्हें ये अपने रानियों को पिलाना है ये पायसम। तो यज्ञ से उत्पन्न हुआ ये व्यक्ति और उनके हाथ में ये बहुत ही शुद्ध स्वच्छ अमृत समान ये पायसम जब महाराज दशरथ पाते हैं तो वास्तविक रूप में अब अनुभव कर रहे हैं भगवान को वो अपने हाथ में पकड़े हैं इस प्रकार से। तो उसका आधा भाग वो देते हैं कौशल्या को और उसका आधा भाग देते हैं वो कैकेयी को, और क्योंकि कैकेयी बहुत ही प्रिय उनकी रानी थी इसीलिए कैकेयी ने उसका गलत फायदा आगे उठाया। बहुत प्रिय थी कैकेयी दशरथ को, तो कैकेयी को आधा भाग दिया और आधा भाग कौशल्या को दिया, और कौशल्या और कैकेयी ने अपने आधे आधे भाग में से कुछ एक भाग निकाला और दोनों ने एक एक भाग दिया सुमित्रा को। तो कौशल्या से उत्पन्न होंगे अब प्रभु श्री रामचंद्र जी, कैकेयी से उत्पन्न होंगे श्री भरत, और सुमित्रा से उत्पन्न होंगे ये जुड़वे भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और इनकी चर्चा हम करेंगे आज शाम को, क्योंकि बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है रामायण में कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए तो किस प्रकार का वातावरण था पूरे विश्व में, केवल अयोध्या नगरी में नहीं बल्कि पूरे विश्व में किस प्रकार का वातावरण था, और सब जगह पर कैसे हर कार्य मंगल हो रहा था और मंगल चिन्ह शुभ चिन्ह दिख रहे थे सब जगह पर। तो ये सब की चर्चा रामायण में वाल्मीकि मुनि ने बहुत सुंदर तरीके से की है और उसकी चर्चा हम करेंगे आज शाम को। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, श्री राम नवमी महामहोत्सव की। तो क्योंकि आज काफी सेवाएं भी हैं तो हम अपनी कथा को यहीं पर विराम देते हैं ताकि हम इन सेवाओं में भी लग जाएं, और आज शाम का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के लिए हम पूर्ण प्रकार से तैयारी में रहें ताकि इस श्लोक में जो हमने आज पढ़ा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो कि सबके आश्रय हैं, जिनके वश में ये पूरा संसार है, जो कि एकमात्र शरण ग्रहण करने व्यक्ति हैं और जो कि हमारे सारे कलमशों को दूर करेंगे, तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम आज का जो शाम का कार्यक्रम है वो अभिषेक से प्रारंभ करेंगे। और हम चाहते हैं कि आज के दिन एक और बहुत विशेष समारोह हम मनाएंगे और वो है इस मंदिर की एक साल की स्थापना। इस मंदिर को एक साल हो रहा है आज, और हम भगवान श्री रामचंद्र जी सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार से सभी भक्तों ने अथक प्रयास कर ये मंदिर यहाँ पर निर्माण किया स्थापित किया, वैसे ही उनकी कृपा से हम सब एकत्रित होकर अब इसके अंदर जो वो चाहते हैं वैसा हम प्रचार करें और लोगों को प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा हर साल बांटते रहें और उसमें वृद्धि होती रहे, उस कृपा को बांटने में वृद्धि होती रहे, यही प्रार्थना हमें आज के दिन उनसे करनी चाहिए। जय श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदी।